शुरू करते हैं।
Recording in progress.
Alhamdulillah wa kafa wa salam ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. ٹھیک ہے, درود شریف پڑھ لیا سب نے انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم کہاں تک پہنچے تھے. کون کرے گا؟ واقعہ اس کا معاملہ ختم ہو گیا تھا, ابھی تو نہیں ختم ہو گیا. جی صحیح, تو ہم نے آپ کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتایا تھا, خان میں بالکل آخری بات یہی تھی. اور یہ بتانے کا مقصد کیا تھا, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سے کیا تعلق تھا؟ ان میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہو گئے تھے. حالانکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کتنے بڑے صحابی تھے, کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے, اور شعر لکھتے تھے. شعر و شاعری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے ان کافروں اور یہودیوں کے خلاف, ٹھیک ہے, لیکن فتنے کے اندر وہ بھی مبتلا ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے جب اتنے بڑے بڑے صحابہ جو ہے فتنے میں مبتلا ہو گئے, یہ اور بات ہے کہ صحابہ نے توبہ کر لی, ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن صحابہ کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ایک لیسن ہے نا, یہ سیکھنے کے لیے ہم سب پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے اندر ڈالا تاکہ ہمارے لیے وہ ایک نمونہ بن جائے نا, ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اسے کہ بھئی ہم نے چاہے ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, کتنے ہی دین کا کام کیوں نہ کر لیں, کتنا ہی جو ہے وہ شعر و شاعری کیوں نہ کر لیں, پڑھانا پڑھنا, سیرت کلاس کرنا, تفسیر کلاس کرنا, فلانے لوگوں کو مشورے دینا, کچھ بھی کر لیں, لیکن ہم اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ نہیں سمجھ سکتے. دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان, ٹھیک ہے. یہ شیطان جو ہے نا, یہ ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے اور کبھی نہ کبھی یہ کوشش کرتا رہتا ہے, کسی نہ کسی طرح کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ خراب کر دے اور ہمارے سارے اعمال کو ضائع کروا دے. مرنے تک ہم اس شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے, نہیں سمجھ سکتے. آپ نے سنا وہ والی آیت, لہم قلوب یعقلون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا, ہے نا, وہ جو آیات ہیں ایک سے زیادہ دفعہ اس طرح سے آیا نا. تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں نا, اولئک کالانعام, یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی تھی لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں, کان دیے تھے لیکن یہ لوگ اس سے سنتے نہیں ہیں, قلوب دیے تھے, عقلیں دی تھیں لیکن یہ ان عقلوں سے سوچتے نہیں ہیں, یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ مویشیوں جیسے ہیں, ٹھیک ہے. مویشی کس کو کہتے ہیں؟ مویشی ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جو کہ آپ کے فارم میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, فارم کے اندر, صحیح ہے. فارم کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ فارمر بھی ہوتا ہے, کوئی ان کا رکھوالا ہوتا ہے, کوئی راعی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو مویشی جو لوگ جو ہوتے ہیں نا, جیسے کیٹل, یہ گائیں, بھینس, بکرے, بھیڑ, ہے نا, مرغیاں وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو مویشی ہوتے ہیں نا, یہ اچھے خاصے جو ہیں وہ کیئر فری ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے گرد فینس لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی فارمرز ہیں, کوئی لوگ ہیں جو کہ ان کا خیال کرنے والے ہیں, اور کوئی وہ جو ہے نا وہ آ کر کے ان پر اٹیک نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو مویشی کافی حد تک غافل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بھی پورے غافل نہیں ہوتے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ جانور ہیں, اللہ کا ذکر پھر بھی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ کس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں؟ مویشی دشمن سے غافل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا دشمن کون ہوتا ہے؟ بھیڑیا, ٹھیک ہے, وولف یا شیر, یہ اس سے غافل ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ہے نا کوئی और हिफाजत करने वाला, तो हम गाफिल हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो काफिर है ना, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बलहुम अवल, ये मवेशियों से भी ज्यादा बेहतर गुजरे, ठीक है। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग तो बिल्कुल ही गाफिल है, ये तो बिल्कुल ही गाफिल है, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ना, ये हमसे बेहतर होते हैं अगर हम गाफिल हो जाए। ये एनिमल्स हमसे बेहतर है क्योंकि एनिमल्स में फिर भी थोड़ा बहुत शऊर होता है, थोड़ी उनको फिक्र रहती है कि कहीं हमारे ऊपर दुश्मन हमला ना कर दें, अल्लाह ताला को भी याद रखते हैं और दुश्मन से भी हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। आपने कभी देखा है कोई चूहा बिल से निकलता हुआ, कभी चूहे को बिल से निकलते हुए देखे? यहाँ पे चूहे अलहमदुल्ला इतने नहीं होते, पाकिस्तान में इंडिया में शायद ज्यादा होते, यहाँ पे भी होते हैं वैसे, डिपेंड्स के आप कहाँ पे जाके देखें। तो चूहा जो होता है ना वो बिल के अंदर रहता है, ठीक है। बिल से जब वो बाहर निकलता है ना, तो वो ऐसे नहीं निकल जाता जिस तरह हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो पता है कैसे निकलता है? वो पहले थोड़ी सी अपनी अपनी वो निकालता है, अपनी नाक बाहर निकालता है, यूं करके देखता है, यूं करके देखता है, ऐसे 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 देखेगा और उसके बाद फिर वो बाहर आएगा। क्यों? इसलिए कि मैं बाहर आऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि शायद मेरा जो दुश्मन है ना वो बिल्ली साहिबा, हमारी तो बिल्लियां भी हमला नहीं करती आजकल चूहों के ऊपर, ठीक है। लेकिन कोई वाकई वाली सही मानों वाली बिल्ली हो ना, शेर की खाला जिसको कहते हैं, वो चूहे के ऊपर हमला ना करते, उसको खाना ले, ठीक है। तो वो पहले यूं करके देखता है और फिर उसके बाद बाहर निकलता है। उसी तरीके से और भी जो जानवर है ना, वो अपने घरों से बाहर निकलने से पहले चेक करते हैं कि कोई अटैक करने वाला तो नहीं है, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं। छिपकली भी ऐसे ही, हमने किसी स्कॉलर की लेक्चर में एक दफा बड़ी जबरदस्त बात सुनी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि छिपकली भी जब बाहर निकलती है ना, तो यूं करके देखती है फिर उसके बाद निकलती है। तो वो अपने दुश्मन से गाफिल नहीं होते, ठीक है, जबकि हम जो है वो अपने दुश्मन से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं, इस वजह से दुश्मन हमारे ऊपर बड़ी आसानी के साथ अटैक कर लेता है। जी और बाकी कहीं भी बैठ भाई, बाहर निकलते हुए बाहर निकलने के बाद तो दुश्मन हमला करे ना, घर के अंदर तो थोड़ी दुश्मन, घर के अंदर तो वो अलावा ऐसे दिन थोड़ी करती रहती। बहरहाल समझाना ये था कि जो जानवर है ना वो भी गाफिल नहीं होते, लेकिन हम जो है वो गाफिल हो जाते हैं, इस वजह से हमारे ऊपर बड़ी बड़ी जो है मुसीबतें आ जाती हैं। तो बहरहाल सहाबा कराम का मामला ऐसा नहीं था कि वो गाफिल हो जाते थे, लेकिन सहाबा कराम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए एग्जाम्पल बनाना चाहा सीखने के लिए, तो उनके साथ भी ऐसे मामला हुए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो इन तीनों में से एक है ना, मिस्ताह, मिस्ताह रजी अल्लाह तआला, जो कि बदरी सहाबी भी थे और जिनकी वालदा जो है वो ठोकर खा के गिर गई थी, तो उन्होंने कहा था ना आयशा रजी अल्लाह के सामने, मिस्ताह को अल्लाह ताला बात कर ऐसे कह दिया था। तो मिस्ताह रजी अल्लाह जो थे ना, ये आपको हमने बताया था कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के तो रिश्तेदार थे, ठीक है ना, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की रिश्तेदारी थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ना रिश्तेदारी की वजह से, और इस वजह से कि मिस्ताह जो थे ये बहुत गरीब थे, ठीक है, इनके जो है वो सोर्स ऑफ इनकम वगैरह जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही गरीब थे। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला इनको स्टाइपेंड्स दिया करते थे, इनको वजीफा दिया करते थे, यानी कुछ पैसा दे करके इनकी मदद किया करते थे। अब जब मिस्ताह रजी अल्लाह तआला ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बेटी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने में शमूलियत हासिल कर ली, वो भी इसके अंदर शामिल हो गए, तो एक तो उनको सजा मिल गई कोड़े लगाने वाली, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला भी इंसान तो इंसान ही है ना, ठीक है। तो उनके ऊपर भी जो है ना, फिर उसके बाद एक गुस्से वाली कैफियत आई कि ये मिस्ता ने मेरे साथ क्या किया, मेरी बेटी के साथ क्या किया, मैं तो इसका रिश्तेदार भी था, मैं तो इसके साथ इतना ज्यादा हेल्प आउट भी इसको करता रहता था, और इसने जो है वो मेरे ही घर के खिलाफ इस तरह का मामला करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इनको जो है ना वो इनके साथ बहुत फिर दिल खराब हुआ और उन्होंने फिर ये वजीफा देना जो है बंद कर दिया, ये फैसला कर लिया कि मैं मिस्ता को जो है ना आज से मैं उसको कोई वजीफा नहीं, ठीक है। इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाह फरमाई डायरेक्टली, नॉट इवन थ्रू नबी अलैहिस्सलाम, वरना तो सहाबा की इस्लाह तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे ना, लेकिन सहाबा में कुछ ऐसे ऐसी बातें थी, कभी कभी अल्लाह ताला खुद भी सहाबा की इस्लाह फरमाते डायरेक्टली भी, ठीक है। जैसे आजकल जो है वो हमारे दादा शेख हैं, तो दादा शेर हमारी इसलाह नहीं करते भाई, हमारी इसलाह जो है हमारे जो शेर है वो करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना वो मामला ऐसा होता है इवन दादा शेख इंटरफेयर कर दे, ठीक है ना। तो गोया के सहाबा के जो शेख थे वो तो नबी अलैहिस्सलाम थे, और अल्लाह ताला जो है उनका दादा शेख, इस तरह समझाने की लिखा लिखा है। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी इंटरफेयर करते थे, तो अल्लाह ताला ने फिर आयात नाजिल फरमाई जो कि हुफाज़े कराम को याद ही होंगी। क्या फरमाते हैं, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम, तुम्हारे दरमियान जो फजल वाले लोग हैं ना, जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है, उनको दौलत भी दी है ना, बड़े एस्टैब्लिश लोग हैं, वो सिद्दीक अल्लाह ताला वाज वन ऑफ देम। ठीक है, इज्जत भी बहुत थी, दौलत भी बहुत थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी फैक्ट्रीज चलती थी मदीना मुनव्वरा के बाहर। ठीक है, तो वो कसम ना खाया करें। ठीक है, वला यअतली मिनकुम उलुल अफ उलुल फजल मिनकुम वसअती, और जिनको हम देखिए, यानी फजल से मुराद दौलत भी होती है, फजल से मुराद इज्जत भी होती है, और सा का लफ्ज भी इस्तेमाल करती है, सा का मतलब वसत, आपके पास माल पैसा बड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो उनको ये कसम नहीं खानी चाहिए, के अहले कराबत यानी रिश्तेदार थे और मसाकीन और मुहाजरीन की मदद नहीं करेंगे, उनको ये कसम नहीं खानी चाहिए कि हम मदद नहीं करेंगे। ठीक है, अल्लाह तो हिब्बुना अन यग़फिर अल्लाह लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे। वल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह ताला तो बहुत माफ करने वाले और बहुत रहम करने वाले हैं, तो भाई तुम भी अल्लाह ताला की तरह जो गलती इनसे हो गई, तुम्हारे रिश्तेदार थे, गरीब थे, मिस्कीन थे, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन तुम उनको माफ कर दो। ठीक है, तखल्लुकू बिअखलाकिल्लाह, अपने आप को अल्लाह ताला के अखलाक से मुजय्यन करो, लोगों को माफ कर दिया करो जब उनसे गलती हो जाए, और वो वैसे ना हो जैसे रेबेलियस किस्म के लोग नहीं है, माफी मांग रहे हैं, नादिम हैं, शर्मिंदा हैं, है ना, तो आप उनको आप माफ कर दिया करें, ऐसी कसम ना खाएं कि उनकी मदद हम नहीं करेंगे। जी
अच्छा,
हाँ ठीक है, असल में वो जो बंदा था ओवर स्मार्ट, वो तो एक ही था, कौन था वो, दुल्ला बिन उबई, वो तो एक ही था, लेकिन बाकी लोग जो है वो साथ साथ फिर शामिल हो जाते हैं, उनसे गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, फिर अगर वो बाद में तौबा करने तो अल्लाह माफ कर देते हैं। अब देखें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कितने बड़े सहाबी थे, सबसे बड़े सहाबी, ठीक है ना, अव्वल सहाबी, और उनकी कितनी इज्जत थी, कितना मर्तबा था, और अल्लाह ताला ने उनकी जो इस्लाह फरमाई कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं, आप ये नहीं करें, तो कैसे इस्लाह फरमाई अल्लाह ताला ने, ये चोरी छुपे इस्लाह फरमाई, हाँ, कि चुपके से जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को फरमा देते कि भाई आप उनको बता दीजिए कि ऐसा काम मत करें, कि आपसे गलती हो गई। ठीक है,
आया
उन्होंने आयात नाजिल फरमाई, आयात नाजिल करने का मतलब पता है क्या होता है, क्या मतलब होता है, पूरी दुनिया उसको पढ़ेगी, और कब तक पढ़ेगी, जब तक कयामत नहीं आएगी उस वक्त तक इन आयात की तिलावत की जाती रहेगी। ठीक है ना, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की इस्लाह करी है, ऐसे करी है कि सारी दुनिया को बता के करी है, और सारे जमानों को बता करके करी है, सिर्फ मुसलमानों को बता के नहीं करी, क्योंकि कुरान मजीद काफिर भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, काफिर भी कुरान मजीद पढ़ते हैं, बोस की वजह से, दुश्मनी की वजह से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, बहुत सारे काफिर पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की गलती की इस्लाह करी है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु आगे से क्या फरमाते हैं, इस तरीके से मैं नहीं खेलता, है ना, जैसे कि हम करते हैं ना, मैं नहीं खेलता, इन्होंने क्यों दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, है? मेरी इज्जत खराब कर दी, मुझे बुरा बना दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया, सबके सामने मुझे जलील और रुसवा कर दिया इन्होंने, ये क्या बात हुई भाई, मैंने आखिर को इतना किया, मैंने इतनी कुर्बानियां दी, मैंने अपना सारा माल जो है मैंने नबी अलैहिस्सलाम के पैरों में रख दिया, मैं सारा जो हिजरत का सफर था उसके अंदर उनके आगे पीछे घूमता रहा, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, और देखो अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया, ये किया ना भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने, नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी इनमें से कोई भी बात नहीं करी, उन्होंने आगे से जवाब दिया, बला वल्लाही अल्लाह की कसम, बल्कि अल्लाह की कसम, इन्नी लाहिब्बु अन यग़फिर अल्लाहु ली, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह کو معاف کر دیا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے. ٹھیک ہے, بالکل بھی ناراض نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے میری اصلاح فرمائی اور واقعی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. تو انہوں نے پھر مستح رضی اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیا اور جو وظیفہ پہلے دیتے تھے نا اس کو ڈبل کر دیا. سبحان اللہ, ڈبل کر دیا اس وظیفے کو. ٹھیک ہے کہ بھائی ماشاء اللہ مستح رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سبب بن گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا قرآن مجید میں. کس وجہ سے؟ مستح کی وجہ سے. چلو بھائی, ہی ڈیزرز ایون مور, ہی ڈیزرز ایون مور, اس کو تو میں اور دوں گا پھر. ٹھیک ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور بھی اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو کہ آپ کو یعنی نئی نسل ہماری ماشاء اللہ نوجوان بچے بچیاں, ٹھیک ہے, ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ لوگ یاد رکھیں یہاں پر, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. وہ کیا کہ ہم لوگ جس دور میں زندہ ہیں نا اس وقت, آپ کو پتا ہے کون سا والا دور ہے؟ فتنہ دجال کا دور ہے. ٹھیک ہے, اور فتنہ دجال کے دور میں کیا ہوگا کہ کوئی آپ سے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں تو ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, آپ مر جائیں. فتنہ دجال یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے, نہ فتنہ دجال یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں, لاؤ بھائی سارے پیسے مجھے دے دو, تمہارے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے, گیو می یور منی. فتنہ دجال یہ فتنہ نہیں. آپ کو نجیب صاحب نے بہت سارے واقعات بتائے ہیں, چنگیز خان کے زمانے کے بتایا تھا نا, چنگیز خان, ہلاکو خان, وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا مسلمانوں کے خلاف. وہ کس چیز کا فتنہ تھا؟ جی مال کا فتنہ تھا. غلط, صحیح جواب دے. جی جان کا فتنہ تھا. چنگیز خان آ کر کے مسلمانوں سے ان کا مال نہیں لوٹتا تھا, ہے نا, کہ پیسے دے دو, ڈاکو ڈاکو نہیں تھا وہ, قاتل تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ بس تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, ہے نا, تم مر جانے کے قابل ہو, تم سارے کے سارے مر جاؤ. وہ مارتا تھا اور مارنے کے بعد آپ کو پتا نا کیا کرتا تھا؟ شاید شاید انہوں نے بھی کہ وہ گردنوں کی ٹاوڑی بناتا تھا, کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا, کھوپڑیاں, یعنی پھر وہ لاشوں کو جو ہے نا وہ گلنے دیتا تھا, سڑنے دیتا تھا. جب لاشیں ختم ہو جاتی تھی, ان کا گوشت سارا کا سارا ختم ہو جاتا تھا نا, تو ان خالی اسکیلٹن رہ جاتا تھا, تو پھر وہ جو سر ہوتے تھے نا, اسکیلٹنس یعنی سکلز جس کو کہتے ہیں, وہ سکلز کے مینار بناتا تھا ایسے, یعنی یہ ٹرائنگل شیپ کے اندر کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا. ٹھیک ہے نا, اس کو مسلمانوں کی جان چاہیے تھی اور کچھ نہیں چاہیے تھا, جان چاہیے. اب ظاہر جان ختم ہو جائے گی تو مال تو ویسے ہی فارغ رہ جائے گا, تو مال بھی ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, تو چنگیز خان کا فتنہ جو تھا وہ فتنہ جان تھا. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے اور برٹش کا فتنہ, برٹش کا فتنہ کس چیز کا فتنہ تھا یہ بتائیں؟ برٹشرز نے جب قبضہ کیا, بلکہ فرینچ نے قبضہ کیا اور ڈچ نے قبضہ کیا, جگہ جگہ جا کر انہوں نے کیا کیا, ان کا ویسے فتنہ جو تھا نا وہ اگر زیادہ دیکھا جائے, جان بھی انہوں نے بہت لوگوں کو مارا بھی لیکن بہت مارا نہیں, زیادہ لوگوں کو نہیں مارا, انہوں نے صرف علماء کو مارا. ٹھیک ہے نا, وہ بھی سب کو نہیں مارا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نہیں, ان کا جو فتنہ تھا نا وہ ٹھیک ہے, مدرسوں والا بھی ایک مسئلہ تھا, لیکن ان کا اگر زیادہ اثر دیکھا جائے نا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ انہوں نے کیا کام کیا. نہیں, ایمان کا فتنہ بھی اس وقت تک اتنا شروع نہیں ہوا تھا. ان کا فتنہ جو تھا وہ بول چکا نہیں, زمین کا بھی اتنا نہیں. کوہ نور ہیرا پتا ہے؟ کوہ نور ہیرا مال کا فتنہ, انہوں نے صحیح جواب دیا. وہ فتنہ مال تھا. جس وقت وہ سب کانٹیننٹ کے اوپر حاکم ہوئے تھے نا, اس وقت سب کانٹیننٹ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ملک تھا ہندوستان. پوری دنیا کا جتنا ریونیو ہوتا ہے نا, جتنا مال پیسہ ہوتا ہے, 25% آف دا انٹائر ورلڈ واز ان دا سب کانٹیننٹ. یہاں پہ ہندوستان کے اندر اتنا مال تھا, اتنا مال تھا. کوہ نور ہیرا آپ نے سنا ہے؟ سب سے بڑا ہیرا مشہور ہے یہ. ٹھیک ہے نا, آج کل وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے برٹش میوزیم میں, اور وہ جو ہے وہ ان کی جو جب کیا کہتے ہیں, کارنیشن کہتے ہیں, کورونیشن, कॉरोनेशन होती है ना, उनको जब ताज पहनाते हैं तो उसके अंदर कोहिनूर हीरा लगा हुआ होता है। तो अब जो है ना वो नए जो प्रिंस प्रिंस चार्ल्स जो है, जब वो किंग चार्ल्स बन गए तो उनको भी जब ताजपोशी हुई तो वो जो कोहिनूर वो हीरा वगैरह जो है ना उनको दिया गया। तो अब जो है ना वो वहां पे शोर मच रहा है कि ये कोहिनूर हीरा तो हम चोरी करके लाए थे हिंदुस्तान से, ठीक है ना। तो अब हिंदुस्तान के कुछ लोग, अब तो वहां पे हिंदुस्तान के लोग जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है तो कोई क्या बना हुआ है, तो कोई क्या बना हुआ है, तो कह रहे भाई ये कोहिनूर हीरा वापस करो, ये तो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, तो हम चोरी करके लेकर के आए थे। लेकिन हकीकत क्या है कि कोहिनूर हीरा जो है ये भी सबसे महंगा हीरा नहीं था, इससे भी ज्यादा महंगा हीरा जो था ना वो आपके हैदराबाद दक्कन वाले, माशाल्लाह काफी लोग बैठे हुए हैं हैदराबाद दक्कन के, जो जो वो थे ना नवाब साहब, तो नवाब साहब के पास इस तरह की एक स्टडी टेबल होती थी जिसमें बैठ के वो अपने ऑफिस के काम करते थे, ठीक है। तो उनकी स्टडी टेबल के ऊपर एक पेपर वेट, कागज उड़ ना जाए तो उनके ऊपर पेपर वेट रख देते हैं, वो पेपर वेट के तौर पर जो हीरा इस्तेमाल करते थे ना वो कोहिनूर हीरा से ज्यादा महंगा हीरा, ये हमने सुना कहीं, ठीक है ना, उससे ज्यादा महंगा हीरा वो पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे अपने। और ये ब्रिटिश आकर के सब कुछ लेकर के चले गए, हत्ता कि आप जो है वो दुनिया के सबसे गरीब मुल्क बन गए, ठीक है ना, वन ऑफ द पुअरेस्ट, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, मुसलमान हो या हिंदू, सारे के सारे, ठीक है, सवाए चंद लोगों को उन्होंने थोड़ा छोड़ दिया थोड़ा सा, अगर तुम बाद में हमारे हुक्मरानी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो माल का फितना, ठीक है, और इस वक्त जो दज्जाल का जो फितना है ना, ये ना वो जान का फितना है, ना उनको मुसलमानों को मारने की फिक्र है, ना उनको मुसलमानों के पैसे की फिक्र है, ना उनको मुसलमानों के मुल्क की फिक्र है। रखो तुम अपने पास अपना मुल्क, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मुल्क, हमें सिर्फ एक चीज चाहिए तुम्हारी, ईमान चाहिए और बस, कुछ और नहीं चाहिए हमें तुम्हारा, तुम आराम से अपने मुल्क में रहो, 14 अगस्त भी मनाना, 15 अगस्त भी मनाना, है ना, और भी मनाते रहना, तुम आजादी आजादी करते रहना, हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी, हमें तुम्हारा सिर्फ ईमान चाहिए, ठीक है ना। काश के हमें बात समझ में आ जाए, हम मान ही नहीं रहे इस बात को, हम इस बात को मान के नहीं दे रहे, हम नहीं मान रहे, उनका नहीं मानूंगा मैं भी, ठीक है। तो खैर बच्चों को समझ में आया कि नहीं, बड़ों को अल्लाह करे समझ में आ गया, तो ये है ईमान का फितना, ठीक है। तो बात कहां से शुरू हुई, हाँ, तो ईमान के फितने के अंदर जो है ना फिर होता क्या है कि लोग जो है ना वो आपके पास आकर के आपको ऐसी बातें करेंगे कि जिनसे आपका एतमाद जो है ना वो खत्म हो जाए। किन चीजों के ऊपर, एक दो नाम बताएं, किन चीजों पर आपका एतमाद खत्म हो जाए, इसके बाद आपका ईमान खत्म हो जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम, उलमा पे एतमाद खत्म हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद खत्म हो जाए, और कयामत पे एतमाद खत्म हो जाए, सहाबा पे एतमाद खत्म हो जाए, और किस चीज से, कुरान पे एतमाद खत्म हो जाए, ठीक है ना, कुरान पे भी तो एतमाद खत्म हो जाए तो बंदा उसके बाद काफिर हो गया, फिर उसका ईमान खत्म हो गया, ठीक है ना। तो कुरान पर एतमाद खत्म करने की भी ये कोशिश करते रहते हैं फितने दज्जाल वाले, ठीक है, कि भाई कुरान में जो चीजें हैं ना ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने नाउज बिल्ला खुद से बना ली, है ना, या नबी अलैहिस्सलाम ने चलो खुद से नहीं बनाई, नबी अलैहिस्सलाम ने तो सच्ची सच्ची बताई थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद लिख करके तो नहीं दिया ना, है ना, एक बड़े ही से टैबलेट के अंदर कुरान मजीद को लिख करके, अभी ये टैबलेट है इसमें कुरान मजीद है, मैंने लिखवाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, सहाबा कराम से लिखवाया, तो सारा का सारा कुरान हम तक जो पहुंचा है वो सहाबा कराम के जरिए से पहुंचा है ना, सहाबा ने लिखा, उन्होंने कही, किसी ने छाप पे लिखा, किसी ने किसी पत्थर पे लिखा, किसी ने हड्डी पे लिखा, किसी ने जो है वो, ठीक है ना। तो अब कोई ये कहे कि अच्छा नबी, कोई को, कोई कहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने नाउजुबिल्ला खुद से कुरान बना लिया, ठीक है ना, कोई कहे कि नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने तो खुद से कुरान ही बनाया था, लेकिन सहाबा ने जो कुरान मिला था ना नबी अलैहिस्सलाम से उसमें चेंजेस कर दी थी, ठीक है ना, उसमें चेंजेस कर दी थी। तो उसका जवाब आप क्या देंगे अगर कोई आपसे ये सवाल करे, अगर पहले से किसी के जहन बता दें, यहाँ पे ऑनलाइन भी गोल्डन वर्ड जी,
नहीं
अभी हम ये ईमानी जवाब नहीं मांगे, हम आपसे इल्मी जवाब मांग रहे, इल्मी जवाब उनको क्या देंगे जी,
आपने
है
जो आपने
जवाब देंगे या नहीं। ठीक है, आप लोगों को जवाब भी देंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए कि क्या जवाब है इसका। ठीक है, तो हम आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा अब्दुल्ला, आप बताएं।
अच्छा
कोई और ऑनलाइन? भाई देखें, आपने कभी सुना है कि ये जो बादशाह लोग होते थे ना, बादशाह लोग, ठीक है, तो बादशाहों की एक बड़ी आदत होती है कि लोग उनके बारे में ना बहुत अच्छी बातें किया करें, ठीक है, और उनकी कोई बुरी बात लोगों को पता ना चले, ठीक है। तो बादशाह जो होते थे ना, जितने भी आज भी हों या पुराने भी हों, वो क्या करते हैं कि वो ना हिस्ट्री लिखवाते हैं। हिस्ट्री लिखवाने वाले जो लिखते हैं ना हिस्ट्री, उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिस्टोरियंस। और उर्दू में उनको कहते हैं मुअर्रिख, तारीख लिखने वाले, ठीक है। तो हर बादशाह के दरबार में कुछ तारीख लिखने वाले, कुछ हिस्टोरियंस होते थे, वो उनसे हिस्ट्री लिखवाते थे कि मेरे जमाने में ये अच्छे काम हुए हैं, मेरे जमाने में ये जबरदस्त बातें हुई थी, और मैं इतना अच्छा हूं, और मैं इतना जबरदस्त हूं, मैं बिल्कुल अपनी सारी सारी तारीफें, बादशाह अपनी तारीफें लिखवाते हैं। यानी जिनके पास ताकत होती है ना, बादशाह के पास ताकत होती है ना, उसके पास आर्मी होती है, पुलिस होती है, तो वो हिस्ट्री के अंदर अपनी तारीफें लिखवाते हैं और कोई बुरी बात नहीं लिखवाते, लिखने ही नहीं देता, खबरदार बुरी बात देखी सब कलम, जिंदा रहने का तो मैं नहीं है, मार दूंगा तुम्हें अगर मेरे खिलाफ कोई बात करी हो, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम अगर खुद कुरान लिखते, अगर खुद कुरान गढ़ने वाले होते, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने बारे में कोई भी बात जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाती हो कुरान मजीद में नहीं आने देते, ठीक है। कोई भी बात जो अपने खिलाफ जाती हो, यानी अपनी गलती का जिसके अंदर जिक्र हो, कुरान मजीद में नहीं आने देते। उसी तरीके से सहाबा कराम, कोई ऐसी बात, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा कराम के हाथ में सारा का सारा कुरान था, तो अगर कोई बात सहाबा के खिलाफ जाती हो, तो सहाबा के लिए बड़ा आसान था कि वो सब मिल मिला करके ना कुरान मजीद में से उन चीजों को बाहर निकाल देते, आने ही नहीं देते कि भाई कल को आने वाले लोग जो है वो हमें कहेंगे अच्छा इनसे भी गलतियां हो गई, ये तो परफेक्ट इंसान होने चाहिए थे, ये कैसी परफेक्शन कि हर वक्त ही कोई ना कोई गलती हो रही है, कभी ये गलती हो रही है, कभी वो गलती हो रही है। व्हाई वर नॉट दे परफेक्ट? दे शुड हैव बीन परफेक्ट, इनको तो परफेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो कोई गलती जो है ना वो कुरान में रहने ही नहीं दो, उसको निकाल दो उसके अंदर से, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर हमें जगह जगह ऐसी भी आयात मिलती हैं कि जिनमें अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम और अच्छे खासे सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं और नरम अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, नबी अलैहिस्सलाम की गलती को भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया और वो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, और सहाबा किराम की गलतियों को भी कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया और वो भी आज तक मौजूद है। अगर ये लोग चाहते, इस तरह से आम जन जाने वाले लफ्ज बोलते हैं, यानी ये नहीं कि अल्लाह चाहता, ये सब बातें नहीं, एक आम सी बात है कि भाई जिस तरह बादशाह लोग जो है वो कोई अपने खिलाफ बात को हिस्ट्री के अंदर नहीं रहने देते, उसको निकाल देते हैं, तो भाई ये लोग भी निकाल देते, ठीक है ना। तो साबित हो ये बात, अब ये देखें, ये अकली दलील कहलाती है, अकली और इल्मी दलील, ठीक है, कि कुरान मजीद के अंदर वो सारी की सारी बातें मौजूद हैं और कुरान मजीद के अंदर सहाबा किराम के बारे में भी सारी की सारी, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक का बताऊं तो पहले खलीफा थे, ठीक है ना, वो अभी निकालो इस वाली आयत को कुरान मजीद में से निकालो, ये तो मेरे खिलाफ जा रही है, ये कैसे हो सकता है मेरे खिलाफ कोई बात हो इसके अंदर, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, अगर कोई भी इस तरह की कोई बात कहे ना कुरान मजीद, अच्छा ये तो अपनी मर्जी से उन्होंने लिख दिया, देखो जो उनको सूट करता है वो लिख दिया, जो उनको सूट नहीं करता उसको निकाल दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि सूट करने वाली चीजों को रख दिया और सूट करने वाली चीज ना चीजों को बाहर निकाल, ठीक है। हाँ, लेकिन जब ये लोग आम मुसलमानों को जाके बोलते हैं ना इस तरह की बातें, तो आम मुसलमानों को ये सारी बातें नहीं पता होती ना, वो आराम से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये तो गलत हो गया, ये तो इसका मतलब कुरान मजीद है वो सही नहीं है वगैरह, ठीक है। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है, दे वर द बेस्ट स्टूडेंट्स, दे वर नॉट परफेक्ट, ठीक है। परफेक्शन जो है वो सिर्फ अल्लाह की जात के साथ है, लेकिन उनकी परफेक्शन क्या थी, परफेक्ट स्टूडेंट्स थे, ठीक है, और परफेक्ट सीकर्स थे, ठीक है, ये सारी बातें उनकी अजीम थी और हमें भी यही उनसे सीखने की कोशिश करनी है। बहरहाल तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं कि जब ये आयात हो गई तो नबी अलैहि सल्लम ने फिर उनका वजीफा डबल कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये आयात बड़ी अहम है जिसका जिक्र पिछली क्लास में हो चुका है कि वाकई इफ जो था वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की क्या थी, मेराज। मेराज कहते हैं किसी को बहुत ऊंचा करना, बुलंदी पे लेकर के जाना। जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की मेराज क्या थी, हिजरत का सफर, और नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज क्या थी, तो कि असल मेराज थी, ठीक है। तो इनकी मेराज जो है ना फिर इन आयात से साबित होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लजीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति, ठीक है, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा, के वो लोग के जिन्होंने तोहमत लगाई किसके ऊपर, अल मुहसनात। अल्लाह ताला ये अल मुहसनात का लफ्ज है वो किसके लिए इस्तेमाल करें, किस पे तोहमत लगी थी, सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला लगी, और किसी पे तोहमत नहीं लगी थी, एक आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला की। उनपे लगी थी लेकिन उनका हमने आपको बताया था कि वो मर्द थे, ठीक है ना, और मर्द के ऊपर जो इस किस्म की बात होती है ना उसका इतना ज्यादा असर नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो टेंस यूज किया है, मर्द वाला टेंस यूज नहीं किया, मर्द के टेंस के अंदर तो चलो औरतें भी शामिल हो जाती हैं, मर्दों से बात हो रही होती है लेकिन औरतें उस किताब है, ठीक है, लेकिन जब औरत वाला टेंस यूज करते हैं, सीधा यूज करते हैं, तो इससे मर्द मुराद नहीं होते, इससे सिर्फ औरत मुराद होती, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बात करी और प्लूरल टेंस में बात करी, फेमिनिन में और प्लूरल के अंदर। कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि प्लूरल टेंस में बात जो होती है ना उससे और भी ज्यादा इज्जत और भी ज्यादा एम्फेसिस के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला को नबी को अल्लाह तआला फरमा रहे हैं मुहसनात यानी पाक दामन, अल्लाह तआला कन्फर्म कर रहे हैं गाफिलात। गाफिलात का क्या होता है, अभी हमने गफलत के ऊपर कोई बात करी थी, गफलत है ना, अभी सोचा नहीं था पहले, लेकिन क्लास के शुरू में गफलत के ऊपर एक बात हो गई। तो गाफिल होना क्या मतलब बताया गया आप लोगों को, गाफिल होने का, गाफिल होना, चले ये बता दें कि गाफिल होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है, ठीक है ना, गाफिल होना बुरी बात है ना। तो अल्लाह ताला आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये गाफिल है, अल गाफिलात। तो ये कैसी तारीफ हो जिसके अंदर बुराई भी शामिल है, है ना, जी बिल्कुल सही आपने बताया। यहाँ पे गाफिल का मतलब अल्लाह से गाफिल होना, दुश्मन से गाफिल होना नहीं, बल्कि गुनाहों से गाफिल होना। ये इतनी अच्छी हैं, इतनी पाकीजा हैं और इतनी प्योर हैं और इतनी, एक और भी लफ्ज आ रहा था जहन में भी, सिंपलटन इंग्लिश में कुछ लोगों को कहते हैं, बहुत सिंपलटन, तो बड़े सादा इंसान, बड़े मासूम हैं ये, इनको तो पता ही नहीं कि गुनाह क्या होते हैं, राइट, इनको तो गुनाहों का पता ही नहीं कि क्या होते हैं। यहाँ पे गाफिलात का ये मतलब है कि इनको तो पता ही नहीं कि गुनाह क्या होते हैं, ठीक है। और हकीकत यही है, हमारे हजरत ने भी एक दफा ये बात समझाई थी अपने बयान के अंदर कि औरत को ना ऐसा ही होना चाहिए, बच्ची को, लड़की को, औरत को, यही सबसे अच्छी बात उसके बारे में यही है कि उसको गुनाहों का पता ही ना हो। गुनाहों का पता कैसे चलता है लोगों को, कैसे पता चलता है कि अच्छा दुनिया में ये गुनाह भी हो रहा है, दुनिया में ये गुनाह भी हो रहा है, दुनिया में वो गुनाह भी हो रहा है, कैसे पता चलता है, पूरे दोस्तों से पता चलता है और मीडिया से पता चलता है और घर के बाहर निकलते हैं आप, राइट, जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो फिर आपको नजर आता है अच्छा उधर ये गुनाह हो रहा है, उधर ये बिलबोर्ड के ऊपर ये लगा हुआ है, उधर जो है वो सिनेमा हॉल के अंदर ये पिक्चर लगी हुई है, इधर जो है ना नाउजिल्ला लोग जो है वो दूसरों को मार रहे हैं, उधर जो है वो कत्ल हो रहा है, उधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, ठीक है ना। तो बाहर निकलते हैं ना तो आपको गुनाह नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। मीडिया भी एक तरह से बाहर निकलना ही है, घर में बैठे हुए लेकिन सारी दुनिया की सैर कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, गोइंग एंड लुकिंग फॉर गुनाह, कुछ लोग सोचते हैं कि जी हमें जितना गुनाहों के बारे में ज्यादा पता होगा ना उतना ज्यादा हम गुनाहों से बचेंगे। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप खुद जो है वो बाहर निकल करके या आप खुद जो है वो मीडिया पे जाकर के जो है ना वो गुनाहों की चीजों को देखना शुरू कर दें ताकि मैं उससे बच सकूं। नहीं, गुनाहों से बचने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला किसी वजह से आपको बता दे, किसी के जरिए से बता दे तो वो और बात है, खुद जाकर के गुनाहों को सर्च आउट करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो गाफिलात होना जो है ना, गुनाहों से गाफिल होना, ये अल्लाह ताला की महबूब सिफत है जो कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदर थी। और फिर उसके बाद ईमान की कंफर्मेशन, अल मुमिनान, है ना, कि ईमान वाली यानी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ईमान के ऊपर अल्लाह ताला ने स्टैम्प सब कर दी, है ना, कि ये तो है ईमान वाली, पक्की बात हो गई। अब जब अल्लाह ताला ने किसी को मोमिनात बता दिया, अब हो ही नहीं सकता कि वो मरने से पहले ना उनका ईमान से महरूम हो जाए, उनसे कोई ऐसी गलती हो जाए कि जिसकी वजह से वो काफिर हो जाए मरने से पहले, अब तो हो ही नहीं सकता। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा इज कंफर्म्ड मोमिन फॉर एवर, इनके ईमान फॉर एवर कंफर्म कर दिया अल्लाह ताला ने। ठीक है, तो ये सब क्या है, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मेराज है। ठीक है, और आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को ये मेराज क्यों मिली, नबी अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत की वजह से, कि अहले बैत में से होने की वजह से। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस दिन यौम तशहदु अलैहिम अलसनतुहुम व अयदीहिम अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, कि ये जिन लोगों ने तोहमत लगाई थी, जिन्होंने सारी हरकतें करी है ना, कयामत के दिन इनकी जुबानें और इनके हाथ और उनके पैर इनके खिलाफ गवाही देंगे। ठीक है, वैसे तो और भी जगहों पर अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन यहाँ फिर फरमाया कि कयामत के दिन गवाही देंगे। तो हम छुप करके किसी से गुनाह कर लें, लेकिन अपने हाथों से तो नहीं छुप सकते, अपनी जुबानों से तो नहीं छुप सकते ना, यही हमारे खिलाफ गवाही देंगी। तो भाई कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जो कि हम छुप करके कर सकते, छुपना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है ना, अल्लाह ताला की साथ भी देख रही है और हमारे अपने ये हाथ पैर जिनसे हम गुनाह कर रहे हैं तो देख ही रहे हैं। यौम इज़न युवफ्फीहिमुल्लाहु दीनहुल हक व यअलमून अन्नल्लाहा हुवल हक्कुल मुबीन, चलेंगे बस हो गया। आगे बढ़ते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी तारीफ क्या हुई कि अल्लाह ताला ने खुद उनको उलुल फजल किया। ठीक है, तो ये भी इब्राहिम ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जैसे कि पिछले कास में बात हुई थी, कि इस पूरे टाइम में बहुत ज्यादा सब्र किया और उन्होंने आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला की खुल करके हिमायत नहीं करी, क्योंकि अपने घर वाले थी और इनको हकीकत का पता नहीं था। अगर ये आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला की हिमायत करते तो उसके अंदर फिर एक एक तो असबियत वाला भी असर आता कि भाई हाँ ठीक है, अगर दूसरे की बेटी कोई गलत काम करती है तो उसका तो फिर आप जो है उनको सजा वजा देते हैं और ये करते हैं, जहाँ अपनी बेटी की बात हुई, हालांकि आपको पता नहीं है हकीकत क्या है, फिर भी आपने उसकी हिमायत करी है, इसको असबियत कहते हैं। ठीक है, तो असबियत बिल्कुल भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं करी। ठीक है, अच्छा, और आखिरी सबसे अहम बात के बल्कि सेकंड लास्ट सबसे अहम बात वो क्या कि आपने सुना होगा शायद पहले कभी आदिल जी के बयान में भी और भी कि इस तरह की तोहमत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर जो लगी थी ना, यानी किरदार की के ऊपर तोहमत लगाने जिसको कहते हैं, इस तरह की तोहमतें पहले भी लोगों के ऊपर लगी हैं। कैसे, कोई मिसालें याद, किन किन के ऊपर इस तरह की तोहमतें पहले भी लगाई गई हैं? बद किरदारी की तोहमत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर लगी थी, और किसके ऊपर लगी है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर भी लगी, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, और एक और वाकया किसी को अगर याद हो, यहाँ पे माशाल्लाह सही जवाब दिया, मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जुलैखा नामी एक औरत ने लगाई थी कि भाई ही वाज डूइंग द बैड थिंग, है ना, और किसके ऊपर लगी थी, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक अंदाज में लगी थी, लेकिन इस तरह की एग्जैक्टली नहीं लगी थी। हाँ, कुछ वाकयात हैं कि भी, एक और बड़ा मशहूर वाकया है, हदीस के अंदर उसका जिक्र है, एक बनी इसराइल का राहिब था, इबादत करने वाला जो अपने आप को अलग करके बस इबादत में लग जाते थे ना, उसका नाम था जुरैज, जुरैज राहिब। ठीक है, तो जुरैज राहिब के ऊपर तोहमत लगी, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के ऊपर तोहमत लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत लगी, लेकिन अल्लाह ताला ने इन तीनों हजरात और खवातीन को उससे बरी करार दिलवा दिया। कैसे करार दिलवाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में किसने शहादत दी थी? एक बहुत छोटे बच्चे ने जो बोल नहीं सकता था, उसने गवाही दी थी ना, ठीक है ना, एक किड। और मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब तोहमत लगी तो उनके हक में किसने गवाही दी? ईसा अलैहिस्सलाम ने, वो भी जो है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी थे, है ना, जो कि बिल्कुल बात नहीं कर सकता, और ईसा अलैहिस्सलाम ने बात किया, उन्होंने तो पूरा बयान ही कर दिया जो कि सूरह मरियम के अंदर मौजूद है, ठीक है। और उसी तरीके से जुरैज राहिब बहुत नेक आदमी था, बहुत इबादतें करता था, उसके ऊपर भी जो है वो किसी ने तोहमत लगाई थी, उसकी भी बचत कैसे हुई? एक बच्चे ने गवाही दी, ठीक है ना, बहुत ही मासूम छोटा सा बच्चा था, बोल नहीं सकता था, उसने बता दिया कि नहीं ये नहीं बल्कि दूसरा बंदा, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों के जो बहुत नेक और परहेजगार, मरियम अलैहिस्सलाम तो क्या बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है, जब इनके ऊपर तोहमतें लगी तो अल्लाह ताला ने किससे गवाही दिलवाई? एक बच्चे से गवाही दिलवाई, ठीक है। हाँ, ये बात और है कि बच्चा भी एक एक मामले में बच्चा भी था, वो बाद में नबी बनने वाले थे ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। लेकिन चले किसी इंसान से, जब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर तोहमत लगी है तो अल्लाह ताला ने ना किसी बच्चे से गवाही दिलवाई, ना किसी नबी से गवाही दिलवाई, है ना, कि भाई नबी अलैहिस्सलाम आप लोगों को बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाजिल फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी, खुद गवाही दी बगैर किसी वास्ते, ठीक है ना। अल्लाह का कलाम अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला का अपना ही कलाम, ठीक है। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी है, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है, अल्लाह ताला ने उनको कितना उठाया, कितना उठाया हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते कितना उठाया। इसी वजह से उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक है कि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को अगर कोई बुरा भला कहता है ना, वो मुसलमान नहीं रहता, वो मुसलमान नहीं रहता। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि इस दौर के अंदर ऐसे लोग जो हैं उनको बड़ी ताकतें मिली हुई हैं, बड़ी बड़ी ताकत, बड़ा उनके पास सारा मीडिया जो है ना, आप जिसको कभी समझते हैं अच्छा, कभी मीडिया को अच्छा समझना शुरू कर देते हैं, कभी नेक समझना शुरू कर देते हैं, कभी सच्चा समझना शुरू कर देते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि वो जो सच भी बोल रहे हैं ना, वो झूठ को कैसे जो है वो सच के लिबादे में ओढ़ करके झूठ असल में आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर से आपको सच लग रहा होता है, लग रहा होता है, लेकिन असल में उसके अंदर ज्यादा बड़ा झूठ छुपा हुआ होता है और हमें नहीं नजर आ रहा होता, हमें नहीं समझ में आ रहा होता, हम उनके सच को पूरा सच समझ रहे होते हैं, हालांकि वो दजल और परेब कर रहे होते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये जितना मीडिया है ना, ये सारा इन्हीं के कर दो, ये आप मेरी तरफ से लिख लें कंफर्म बात है, ये सारा इन्हीं के कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा और सहाबा किराम के दुश्मन, चाहे वो यहूद हो, चाहे वो उम्मत मुस्लिमा के यहूद हो, चाहे वो उम्मत ईसवीया के, ठीक है ना, सारे के सारे। और हज़रत इदरीस सिकंदर भी रहमतुल्लाह ने भी यही लिखा है, ठीक है, मीडिया का नहीं लिखा, लेकिन दो उम्मतों के दो यहूद किया है, ठीक है। तो इस बात पर हम फिर वाते को करते हैं, अपने दुश्मनों को पहचाने, ईमान के दुश्मन, ठीक है ना। अगर आपने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना ना, आप तो फिर चूहे भी ज्यादा से भी ज्यादा, क्या हुए, चूहे से भी ज्यादा, जो कि दुश्मन से हर वक्त फिक्रमंद रहता है और बहुत ताक में रहता है कि कहीं बाहर दुश्मन तो नहीं है, मैं बाहर निकला तो उसमें फिर हमला कर, हम तो छिपकली से भी ज्यादा बदतर, छिपकली भी जो है वो दुश्मन से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और हमें पता ही नहीं कि दुश्मन है कौन, हमें इसी बात का नहीं समझ में आ रही कि दुश्मन, हमने क्या अपने आप को बचाना, हमने क्या अपने ईमान को और अपने औलाद के ईमान को बचाना, दाढ़ियां रख करके खाली ईमान नहीं बचता, याद रखिए, ठीक है ना, दाढ़ी रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन ईमान सिर्फ दाढ़ी से नहीं बचता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जो अगला वाकया है वो भी हम शुरू कर लेते हैं, बल्कि उम्मीद है कि हम कर लेते हैं आपसे 5-10 मिनट लेकर के। अगला वाकया भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बड़ा गहरा ताल्लुक रखता है, ये वाकया है तयम्मुम की आयात के नाज़िल, ठीक है। तो ये जो गजवा था ना, इसका नाम क्या था, बनी अल मुस्तलक, गजवा बनी अल मुस्तलक, ठीक है। तो इस गजवे में आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार जो है वो टूट गया था, گر گیا تھا، ٹوٹ کے بکھر گیا تھا، ہے نا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اس کو کلیکٹ کرنے کے اندر لگ گئی تھیں، ٹھیک ہے، ادھار لے کر کے آئی تھیں، امانت ہوتی ہے، خیانت تو نہیں کر سکتے، سامنے ہار کے ٹکڑے موجود ہیں، اس کو کلیکٹ کرو. تو اس کے اندر ان کو اتنا ٹائم لگ گیا کہ قافلہ جو ہے نا وہ سمجھ کر کے گئی، تو آگے بیٹھی ہوئی ہیں، نکل گیا قافلہ. ٹھیک ہے، کچھ علماء کے نزدیک اسی واقعے میں ایک بار پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، ہے نا، بڑا زبردست ہار تھا یہ، پھر گم ہو گیا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کام بھائی. ٹھیک ہے، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اسی واقعے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار ایک بار پھر گم ہو گیا، اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس واقعے میں نہیں گم ہوا، بلکہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا نبی علیہ السلام کے ساتھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک غزوے کے اوپر نکلی تھی، اور وہاں پر جو ہے نا ایک جگہ پہ وہ ہار جو ہے نا وہ گر گیا، گم ہو گیا، اور پتا نہیں لگا، تھوڑی دیر کے بعد پتا لگا ہار اتنا قیمتی تھا، اور وہی بات ہے کہ ہار کا ہوگا، عادت ہوگی وغیرہ. تو جب نبی علیہ السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا بھی ہمیں تو اس ہار کو تلاش کرنا پڑے گا، ہم ایسے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پورے قافلے کو ادھر ٹھہرا. ٹھیک ہے، اب جب وہاں پہ ٹھہرا دیا تو قدرتاً ہار تلاش کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت. ٹھیک ہے، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر کوئی پانی وغیرہ کا ریزروائر، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی دریا، کوئی چیز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کو رکواتے کہاں پر تھے؟ جہاں پہ پانی کا کوئی انتظام ہوتا تھا تاکہ لوگ وضو کر کے، وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ سکیں. یہاں پہ تو ہار کی وجہ سے رکنا پڑ گیا، یہاں پہ تو پانی کا انتظام ہی نہیں تھا، اب کیا کریں بھائی؟ ٹھیک ہے، اب جو ہے نا صحابہ بھی پریشان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان، کیونکہ ہار تو بہرحال ہار ہے، اس سے بھی زیادہ اہم چیز مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے، اب سب کو پریشانی لگنی شروع ہوئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو آیا بیٹی صاحبہ کے اوپر پھر غصہ، ہے نا، یہ کیا کیا تم نے اے عائشہ، ہے نا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو کہا کہ تمہاری وجہ سے جو ہے نا تو ہر سفر میں لوگوں کے لیے مشقت اور بلا بن جاتی ہے. بھائی ابو ابو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شوہر شوہر ہوتا ہے لیکن ابو تو ابو ہی ہوتے ہیں، جو کر لیں آپ. ٹھیک ہے نا، تو بیٹیاں بھی ماشاءاللہ سن رہی ہیں، وہ یاد رکھیں ابو تو ابو ہی ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق ہوں یا آپ کے ابو ہوں. ٹھیک ہے، تو ابو نے کہا کہ کیا ہے عائشہ، تم تو ہر سفر کے اندر ہی مصیبت بن جاتی ہو، لوگوں کے لیے مشکل، تکلیف، پچھلے سفر میں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اب جو ہے وہ تمہارا ہار پھر سے گم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آخر کو محبوب کی محبوبہ تھی. ٹھیک ہے نا، عائشہ صدیقہ کیا تھی، اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی بلوڈ محبوبہ، بیوی کے ساتھ محبت، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پھر آیات نازل کر دی. ٹھیک ہے نا، اور وہ آیات کون سی تھیں، وہ آیات تھیں آیات تیمم. مجھے تو یاد نہیں ہے، حفاظ کرام اگر جلدی سے کوئی آیت پڑھو. اس کے بعد ہے، یہ تو وضو والی آیات ہے، کے بعد ہے وضو والی آیات کے تھوڑے بعد ہی پھر تیمم والی آیات بھی ہیں. وتیمموا صعیدا طیبا. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی طریقہ بھی آ گیا. تو جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو ایک صحابی جو ہے نا وہ انہوں نے جب سنا نا تو بہت خوش ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یعنی اے ابو بکر، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے اوپر کوئی اللہ کی نعمت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو پہلے بھی ایسی معاملات ہو چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ریلیٹڈ، جس سے کہ مسلمانوں کو سب کو بہت فائدہ ہوا تھا. نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچانا سارا کام ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ان کی فیملی نے کیا تھا، اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی تھی مسلمانوں کے لیے. پھر اس کے بعد یہ تیمم کی آیات کا نازل ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت تھی. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیات سنی نا تو وہ آ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے یا عائشہ انکی لمبارکتن، انکی لمبارکتن، انکی لمبارکتن، ہے نا، بے شک تو تو بہت زیادہ مبارک چیز ہے، تو بہت زیادہ مبارک چیز ہے، تو تو بہت زیادہ مبارک چیز ہے. تین مرتبہ انہوں نے پڑھا. ٹھیک ہے، پچھلے دنوں جو ہے نا وہ ایک ہم کسی کا سانگ سن رہے تھے، اسلامک سانگ تھا، ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر دف ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن فرسٹ ٹائم سن کر کے ہی بتانا تھا کہ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं है। तो जब हमने उसको सुना ना, तो उसके अंदर यही अल्फाज थे, मुबारकुन, जो सुनने वाले जिनको याद है वो पहचान गए होंगे कि उसके अंदर ना था कि किसी की शादी के ऊपर मुबारकबाद दे रहे हैं, तो उस सॉन्ग के अंदर मुबारकुन मुबारकुन। तो जब मैंने ये वाली हदीस पढ़ी तो मुझे वो गाना याद आ गया, जैन दीखा का गाना, ठीक है। फिर उसके अंदर चूंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो फिर हमने उसको नहीं किया, दूसरा कोई नाद रख ली, उसमें भी ऐसे ही था मुबारकुन, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, इन नकी न मुबारकतुन, इन नकी न मुबारकतुन, इन नकी मुबारकतुन, ठीक है। तो ये हो गया नुज़ूल तयम्मुम की आयात का वाकया, और इसके बाद जो है वो अगली क्लास के अंदर जो हम शुरू करेंगे ना, वो फिर एक और बहुत बड़ा वाकया, बल्कि अजीम वाकया, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर एक और बड़ी आजमाइश, बल्कि बहुत बड़ी आजमाइश, वर्ल्ड वॉर, अरेबिया की वर्ल्ड वॉर थी। कौन सी थी? ग़ज़वा खंदक, ठीक है ना, ये अरेबियन वर्ल्ड वॉर थी, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। अगर किसी कोई सवाल वगैरह पूछता हो बता दीजिए। इन्होंने तयम्मुम की आयात यहाँ पे नकल कर दी है, وَإِنْكُمْ تُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، بس اگر تم پانی کو نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، अपने बस चेहरे को जो है वो उससे मसा कर लो मिट्टी से, और अपने हाथों के ऊपर उससे मसा कर लो। ये हो गया तुम्हारा तयम्मुम। अब तुम उसके साथ नमाज भी पढ़ सकते हो, और तुम उसके साथ तिलावत भी कर सकते हो, सारी इबादत के काम से कर सकते हो। लेकिन जब नमाज का टाइम खत्म हो जाता है, अगली नमाज का टाइम आ जाता है ना, फिर दोबारा से टाइम, ठीक है। अच्छा ठीक, कोई सवाल कॉमेंट नहीं, तो फिर हम क्लास खत्म करते हैं। वह आखिर तारवान
recording stopped.